الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور جی
صاحب، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کل کے لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا اس میں ایک بنیادی مسئلے کے بارے میں کچھ سوالات میں لے لیں گے، میں چاہتا تھا کہ پہلے اگر پیش کر دوں دو چار منٹ دوں گا ہم کو ایکسپلین کرنے میں، اور ہو سکتا ہے بیان کرنے میں تھوڑا میں تو پھر اپنے نوٹس کو دیکھ کر جاؤں تاکہ کوئی بات پھیل جائے. دراصل اس کتاب میں جو اب تک ہم نے اصول مبادی پڑھے اس میں جو چیز بنیادی طور پہ جو کام جلتا نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کچھ بنیادی چیزوں کو صحیح جگہ پہ پلیس کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، لیکن اصل اصول میں جو بالکل ابتدائی پیرا ہے جس میں حضور اکرم کی جو پلیسمنٹ کی گئی ہے ایز اے تنہا ماخذ دین کا، اس کے بارے میں میرا خیال ہے پھر سے کیونکہ اس کو اس بات کو جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے جذبات میں وہ داخل ہے اور جس طریقے سے صوفیہ نے اس کو اس انتہا پہ پہنچا دیا کہ وہ سورج اور خربوزے کی مثال سامنے آ گئی جس کے نتیجے میں بالکل متوازی دین جو ہے اس کو سند مل گئی. اب بات یہ ہے یہ پیرا جو ہے نا، میں ذرا نوٹ دیکھ رہا تھا، یہ پیرا اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کے پہلے دین کے تصور میں پہلے سے ایک پہلا پہلا تھا
نہیں؟
اچھا اصول مبادی میں ایک دفعہ پہلے بھی پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس پہ پورا ایک مینار اس وقت نہیں ہوا. اب یہ اگر آپ انالیسس کریں تو یہ بیسیکلی ایک عقلی مقدمہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے دین کا حضور اعظم آخری نبی تھے، وہی واحد واسطہ تھے جبریل کے رستے سے اللہ کے پیغام پر پہنچانے کا، اور چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے دین مکمل ہو گیا اور اپنی آخری فارم میں قرآن میں آ گیا، قرآن کی فارم میں اور حضور اکرم کی سنت میں آ گیا، اس لیے اب وہی واحد مقام. لیکن اس مضبوط مقدمے کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ضرور ہوتے ہیں. پہلا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم دین کے موجود تو نہیں، دین کے جنے والے تو نہیں، ٹھیک ہے وہ تو ایک عام بات ہے، بات کو پہنچانے والے ماخذ کے طور پہ ان کا بیان کیا تھا، کیا یہ صحیح بیان ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماخذ جس کو بیان کیا جائے وہ ریفریبل ہونا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو ماخذ کرا سکتے ہیں تو اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی رائے آپ قائم کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہونا چاہیے اس تک پہنچنے کا کہ جس سے پوچھا جا سکے کہ کیا یہ بات صحیح، کیا ہم یہ بات کو صحیح سمجھیں اگر وہ ماخذ ہے. تو اس پہلو سے جب غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ حضور اکرم اپنی زندگی میں تو ماخذ تھے، دین ان پر براہ راست اترا، لوگ سامنے موجود تھے، کوئی آراء قائم ہوتی تھی، کوئی اختلاف ہوتا تھا لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ دین اس کے بارے میں کیا ہے، اور وہ اپنا دین بتا دیتے تھے جو نافذ ہو جاتا، لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں رہتا. مقصد ان اسنس جو ماخذ ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ اس کو ریفر بیک ہونا چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بنیادی بات کرنے کے لیے عقلی دلیل کافی نہیں، کیونکہ عقل کی محافظت دین کر رہا ہے تو اس کے لیے دینی دلیل ہونی چاہیے ضرور مزید. مثلا کیا اللہ میاں نے قرآن میں حضور کو محافظ قرار دیا؟ میری نالج کیا تک بتا ہے شاید نہیں. کیا حضور نے خود اپنے آپ کو دین کا محافظ قرار دیا؟ یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کو دیکھنا چاہیے. ان احادیث میں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے لو، مجھ سے دین سمجھو، تو کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے یا آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اور ہے؟ ان کے سامنے جو موجود تھے ان کو تو وہ کہہ سکتے تھے مجھ سے لو، ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو ان تک پہنچ نہیں سکتے، तो हम उनसे दीप कैसे ले सकते हैं। ठीक, एक और बात जो दिल में आती है वो ये कि एक दो बड़े अजीम बातें हुई हुजूर अकरम के जाने से पहले पहले। एक तो कुरान हकीम को नए तरीके से नए तदवीन के साथ मरतब कर दिया गया, उसकी महाजत का इंतजाम, साथ ही उन्होंने अपनी सुन्नत को राइज कर दिया, राइज करके बजाहिर ये रखा कि वो अपना काम मुकम्मल करके दुनिया से चले गए। अब हमारे पास अगर कोई माखज है तो माखज या कुरान है ये सुन्नत है, हम उसको उनको माखज के तौर पे जब बयान करते हैं तो क्या हम कोई बुनियादी गलती तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर कुरान को अब जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, जो आपने बयान किया है या इस फिक्र ने बयान किया है, इसका मौजू आपने मुतय्यन कर दिया कि ये हुजूर अकरम की सरगुजश्त है, उनके दावत और इंतजार की एक सरगुजश्त है, हमारे लिए बराह रास्त कोई पैगाम नहीं है, एक सरगुजश्त है जो उनकी अपनी नस्ल पे नाफिज होनी है, इवन कुरैश के आने वाली नस्लों पर भी नाफिज नहीं, वो उन्होंने नाफिज की, नाफिज करके तस्दीर और दावत दी। ठीक है, तो उस और अल्लाह की अदालत का इंतजाम कायम कर दिया, इवन उसके जो कॉन्टेंट्स हैं अब हम किस तरह समझते हैं, उसका बहुत सारा हिस्सा सिर्फ उनसे मुतल्लक है और बल्कि उस नस्ल से मुतल्लक है, हम तक तो पहुंचते ही नहीं, हम तो आम जराए से जिस तरीके से इल्म हासिल करते हैं उसी उन्हीं जराए से कुरान को या सुन्नत को माफत मान के हम उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा इशारा नहीं है इस तरफ कि जी माखज अब जो है, अब हमारे लिए माखज हुजूर अकरम की वफात के बाद माखज सिर्फ कुरान और सुन्नत, मकसद अगर आप उनकी मिसाल ही लें जो सूफिया ने की है तो ऐसे ही है कि जैसे आखिरी आफ्ताब नबूवत गुरू होने से पहले ऐसा इंतजाम कर दिया गया कि दो सेल्फ जनरेटिंग रोशनी के सस्टेनिंग जनरेटर्स क्रिएट हो गए कुरान और सुन्नत के मुकाबले के उसमें, तो उनसे हमें उनको माखज डिक्लेयर करना चाहिए। तीसरी बात यह कि इसमें जब कोई बात बयान की जाती है तो जहाँ कुछ मन की दलायल है कुछ मतलब दलायल है, अल्टीमेटली जब आदमी किसी नतीजे पर पहुंचता है तो किसी इंसेंटिव की वजह से बात होता है। अगर हम उस राय से हट के इस राय को अपना लें तो उसके नतीजे में तसव्वुफ की बुनियादी कट जाती है, किसी और फिक्र की बुनियादी कट जाती है, जो भी हर एक को इख्तियार है कि वो अपना कोई दीन बयान करे अपनी कोई फिक्र बयान करे, लेकिन जब वो हुजूर अकरम से निस्बत करके उसको बयान करेगा तो उसे ला महाला कुरान और सुन्नत की दलील देनी पड़ेगी, वो बराह रास्त ताल्लुक की कोई दलील नहीं दे सकती। तो ये इंसेंटिव मुझे महसूस होता है कि इसको हम रिकंसिडर कर लें, तो महसूस हो जाए मुझे तो ये महसूस होता है जज्बाती सतह पे अगर मैं देखूं जो हमारी सिचुएशन बन गई है, मेरा अपना दिल डूब डूब जा रहा है ये बात बयान करते हुए, लेकिन बात है कि इल्म की दुनिया में जज्बात नहीं चले, जज्बात से मोटिवेट हो के आदमी इल्मी तौर पर गौर तो जरूर करेगा लेकिन दलील तो इल्मी देनी पड़ेगी और अपील देनी पड़ेगी। इसलिए अगर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हुजूर अकरम की प्लेसमेंट क्या हो, उनकी प्लेसमेंट निस्बत की प्लेसमेंट होगी क्योंकि ये आखिरी दिन इनमें महफूज है, ये दो माखज हैं और ये हमें हुजूर अकरम देते गए, ये और उसके लिए कोई दलील देने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया जानती है, इससे ज्यादा एस्टैब्लिश फैक्ट कोई नहीं है कि हुजूर अकरम आए थे और ये दो चीजें देखे गए। इस तरीके से सूरज शुरू हो जाता है तो किसी कोई उसके दलील की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये कि हम दुनिया में जब हम इल्म के माखज ढूंढते हैं तो हम किस तरीके से ढूंढते हैं, फिक्र मौजूदी का माखज क्या है, मौजूदी तो नहीं, फिक्र इकबाल का माखज क्या है, अफलातून की फिक्र का माखज क्या है, हम ये कहेंगे कि ये फिक्र उसने पेश की लेकिन माखज अब जो है कि उसकी फिक्र क्या थी उसकी उनकी मौत के बाद, तो उनकी उन्होंने जो कुछ छोड़ा है या कोई रिवायत है हम उसकी तहकीक करेंगे रिवायत सही है कि नहीं है, हम उसकी किताबों को देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई फल मल तो नहीं हो गया, लेकिन माखज तो वो चीजें रह जाएंगी हमारे तहकीक। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी राय नहीं, ये कुछ सवाल आते हैं जो मेरे जहन में आए हैं और मतलब राय कायम करने की मेरी कॉम्पिटेंस नहीं, मैं तो सिर्फ ये तालिबाना यूं समझे कोशिश है टू असिस्ट यू कि आप अपनी राय बनाएं। और दादा है, मुझे ये लगता है कि जो दीन जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं उसका ये लॉजिकल कंक्लूजन है। और ये बात तो तय है कि जो भी कंक्लूजन अल्टीमेटली निकलेगा वो आप कोई राय कायम करेंगे, कोई और आलम कोई राय कायम करेगा, हम उसे रेफर बैक करेंगे, बुजुर्ग हमसे जाकर जाकर भी पूछ सकते हैं अगर हम आपसे। थैंक यू।
ये बहस आपने ऐसे वक्त पर छेड़ी जब इसको गुजरे हुए महीनों हो चुके। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे करेंगे कि ये जैसे ही मुकम्मल हो जाता है दीन का सही तसव्वुर तो एक नशस्त बड़ी अहम बहस है, यानी उस वक्त अगर छिड़ जाती तो उस वक्त भी दो चार नशस्तें इसकी नज़र की जा सकती थी और बड़ी अच्छी बहस है, उसमें आप लोग भी शरीक हो सकते हैं। तो इस पर एक नशस्त कर लेंगे ताकि सारे ही सवाल जो है उनका जायजा लेते देख लिया जाए। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जिस पर आप इस दौरान में गौर करते रहिए, वो ये कि जो माखज की आपने तारीफ की उसमें सुन्नत को फिर माखज करार कैसे दे, यानी कुरान का तो मसला ही ना, क्योंकि किताब है जिसमें दीन है। मौलवी साहब की तो किताब है ना, जब आप कहेंगे कुरान और सुन्नत माखज़ है, सुन्नत कोई ज़र्फ नहीं है जिसमें से कोई चीज लेनी, कुरान तो है, सुन्नत तो खुद दीन है, या तो फिर उम्मत हो जाएगी, अक्स कहाँ से करें, उस सूरत में फिर उम्मत का इजमा होगा। मैं ये प्रॉब्लम रख रहा हूँ, मैं अभी उस मौजूद पर गुफ्तगू नहीं कर रहा, प्रॉब्लम बता रहा हूँ कुरान की हद तक ठीक कि भाई कुरान को हम माखज करा दें।
लेकिन जैसे आपने ध्यान दिया तो कुरान भी उम्मत के पास है ना, उसके उसके जो मौजूद इख्तलाफात हैं
जब हम दीन अक्स करने जाएंगे, रेफर बैक करेंगे ना, तो रेफर बैक जब करेंगे तो दीन को हासिल करने की कुरान की तरफ तो कर सकते हैं, क्योंकि कुरान एक किताब है जिसमें बहुत कुछ है और उसके अंदर दीन भी पड़ा है, निकाल लेंगे उसके अंदर से। माखज का मतलब है ना अक्स करने की जगह, यानी कौन सी जगह है जहाँ से हम वो चीज़ लेंगे। जब हम कहते हैं कुरान माखज है तो ये बात ठीक है, यानी कही जा सकती, उसकी वजह यह है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिससे हम दीन निकाल के ले आए। लेकिन जब वो सुन्नत माखज है, मतलब में सुन्नत कोई चीज नहीं है जिसमें कोई दीन पड़ा हुआ है, सुन्नत का मतलब तो यह खुद दीन, यानी ये एक नाजुक मसला है जिस पर इस दौरान में आप गौर करते हैं। दूसरी जो चीज है उसमें भी गौर करते हैं कि वहां ऐसे नहीं कि मैंने अपनी मुकदमा चाहिए, उस पर आयत है जिसमें कुरान मजीद ने यही किया है, इसलिए मेरे बुनियाद वो आयत है, ऐसा नहीं है कि मैंने अकली मुकदमे कर दिया, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन इस पर एक पूरी नशस्त होगी इंशाल्लाह, यानी ये एक अहम वक्त और ये किसी हद तक ये बहस इसमें आ भी जानी है, यानी उस आयत को जो यहां भी आना है तो इसलिए वो आयत आ जाएगी। मैंने बल्कि उस वक्त याद होगा कहा था कि इस आयत के जो बहुत से पहलुओं पर मैंने यहां गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि दीन का सही तसव्वुर तो दीन का सही तसव्वुर। अब आप लोग भी ज़हनी तैयारी कीजिए, यानी ये सवालात जो हैं बल्कि अगर लेके इनको आप भी ज़रा इस पर गौर करें, जो आप लोगों में से इतनी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो एक अच्छी नशस्त कर रहे हैं और ये बड़ी कुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि जब आपके सामने मुख्तलिफ पहलू आते हैं तो कोई ना कोई नई हकीकतें भी उससे मिलती हैं और मुझे भी मौका मिलता है कि मैं अपनी आरा पर अपने नुक्ता नज़र पर नज़र उठा लूँ। इन्होंने ये खत लिखा था इसी दौरान में हनीफ सर ने, मैंने बहुत उसको गौर के साथ पढ़ा, मेरा ख्याल था कि उसको भी किसी वक्त जब रसूम व आदाब जेहरे बहस आएंगे तो ले आएंगे जेहरे बहस, उस पर भी एक अच्छी नशस्त करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद अमीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, दीन का सही तसव्वुर ये ज़ेरो उनवान जिन बहस का हम मुताला कर रहे हैं उनमें इस बुनियादी मुकदमे पर मुख्तसर गुफ्तगू पिछले लेक्चर में हो गई थी कि दीन की हकीकत अल्लाह की इबादत और इबादत उर्दू में भी एक मुस्तमल लफ्ज है। आप उस मफहूम को थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल दो, यहां मैंने उसको इसीलिए वावैन में लिखा है ताकि ये वाजे रहे कि ये एक توحید سے سمجھیں گے. اللہ کی عبادت ہونے کی حیثیت سے دین کو یا دین کی حقیقت کو دوسرے لوگوں نے کیسے دیکھا, اس میں صوفیہ کا نقطہ نظر, اور صوفیہ سے میں نے واضح کر دیا تھا کہ مراد وہ اہل علم ہے ہمارے یہاں, وہ علماء, وہ جلیل القدر علماء ہیں جن کا اس امت پر اور اس امت کے علم و عمل پر غیر معمولی اثر ہے. نہ امام غزالی کے اثرات کوئی معمولی ہیں اور نہ امام الہند شاہ ولی اللہ کے اثرات کوئی معمولی ہیں, یہ متصوف علماء ہیں, یعنی وہ علماء ہیں جن کی تصوف میں بڑی غیر معمولی دلچسپی ہے اور جو اصلا تصوف ہی کی تعبیر کو صحیح سمجھتے ہیں. انہوں نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے, یا اگر اس زاویے سے ہٹ کر دیکھا ہے تو اس کی کیا تصویر ہمارے سامنے آتی ہے, اس کا ایک اجمالی بیان جتنا ایک اس وقت ممکن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے بعد ہم جب اسی بحث میں آگے بڑھتے ہیں تو جہاں مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعبیر زیر بحث آتی ہے وہ ذرا بات کمانی ہے, یعنی اسی عبادت میں ذرا آگے, وہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ دین کی حقیقت کچھ اور بیان کرتے ہیں, وہ بھی دین کی حقیقت عبادت ہی بیان کرتے ہیں. ان کے ہاں اسی چیز کو ان کی پوری دعوت میں بنیاد کی حیثیت حاصل, یعنی اختلاف نہ اس آیت کے معاملے میں ہے نہ اس کو دین کی حقیقت قرار دینے کے معاملے میں, وہ بھی اپنی ساری کی ساری دعوت اسی اصول پر پیش کرتے تھے کہ ہم انسانوں کو بندگی رب کی طرف بلاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بحث نہیں ہے. چنانچہ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں میں بھی انہوں نے جن اصطلاحوں کو موضوع بنایا ہے ان میں سے ایک الہ ہے, ایک رب ہے, ایک عبادت ہے اور ایک دین. اور الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح بنانے کے وجود ان کے فکر میں ہے, لیکن اگر عبادت اور دین کو آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں بنیادی اصطلاح ہیں. یعنی الہ اور رب کو کیوں انہوں نے شامل کیا, اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں اور نام ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, تو اس میں سے انہوں نے الہ اور رب کو بنیادی اصطلاح قرار دے کے چار بنیادی اصطلاح, کتاب کا نام یہی ہے, اس کو موضوع بنایا. میں نے یہ کیا کہ الہ اور رب کو اس میں شامل کرنے کی وجہ تو آگے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ان کا بنیادی فکر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے, لیکن عبادت اور دین کے بنیادی اصطلاحات ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی عبادت جیسے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اور دین جیسے کہ اس کے فوراً بعد زیر بحث آ جائے گا, یہ بنیادی اصطلاحات, اس میں کوئی شک نہیں. تو اختلاف یہاں نہیں, یعنی یہاں تک اتفاق کے ساتھ میں نے صوفیہ کے مسلک پر یا مذہب پر یا نقطۂ نظر پر اس لیے یہاں گفتگو کر دی تھی کہ ان کے یہاں ہی کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی عبادت کا جو مدعا انہوں نے بیان کیا اس میں ہو جاتے ہیں, اور جنہوں نے عبادت کو بنیاد بنا کر دین کی حقیقت کو سمجھا وہ ویسے بھی اکلے قلیل ہیں, زیادہ تر معاملے کو دوسری جانب لے گئے. یعنی جیسے کہ اس کی تفصیل میں نے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے یا بعض دوسرے بزرگوں کے حوالے سے کر دی تھی. اس کے بالکل برخلاف مولانا مودودی صاحب اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں, یعنی جس طرح کی باقی امت کے علماء نے اس امت کی 14 صدیوں کی علمی تاریخ میں سوائے متصوفین کے باقی سب لوگ اس بنیادی مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے, یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو بیان کیا, تو مودودی صاحب کو بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں. آگے وہ کہاں مختلف ہوتے ہیں یا کہاں ان کا نقطہ نظر ان کے پورے فکر میں یہیں سے اپنی اساسات اور اپنی بنیادیں قائم کرتا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کر دینے کے لیے بھیجے. یعنی آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن نے بہت سے مقامات پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مثلاً سورہ عراف میں دیکھیا, سورہ نحل میں بھی یہ صورت اختیار ہے اور بھی کئی لوگوں پر ہے. قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت 5-7 آیتوں میں بیان کرے گا, پھر دوسرے ہی کرے گا, پھر تیسرے ہی کرے گا. آپ حیرت انگیز طریقے پر یہ دیکھیں گے کہ اس سرگزشت کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ نوح آئے, ابراہیم آئے, لوط آئے, صالح آئے, اور انہوں نے آ کر لوگوں کو کہا تو خدا کی بندگی کرو, یعنی یہی جملہ ہوگا یہ جو ہے نا جو یہاں بیان ہوا ہے, انعبد اللہ یعنی اللہ کی بندگی کرو. تو جگہ جگہ گویا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بھی اگر ایک لفظ میں بیان کیا کسی میں بیان کیا, یہ اتنا زیادہ قرآن مجید میں ملے گا کہ بعض موقعوں کے اوپر तो 10-15 मौके होंगे एक ही सूरा के अंदर उनमें रिपीट हो रहा होगा, अनेबुदुल्ला अनेबुदुल्ला, गोया वो अपनी सारी दावत यहीं से शुरू करते हैं। ये उसकी तरफ मैंने इशारा किया। कुरान मजीद ने जगह जगह बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि खुदावंद आलम ने अपने पैगंबर इंसान को इसी हकीकत से आगाह कर देने के लिए भेजे थे। इसको खुद कुरान ने क्योंकि बतौर एक वाज ताबीर के इस जगह बयान किया है तो मैंने वो आयत नकल कर दी। वलकद बसना फी कुल्ले उम्मत रसूल एरबुदुल्ला वस्तन गुप्ता, यानी हमने हर उम्मत में एक रसूल इस दावत के साथ उठाया। ये पैगाम देकर हमने कहा कि जाओ इंसानों को पहुंचाओ कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। ये सूरह नहल में बयान किया। अब यहां इससे ये सवाल बने, यहां तक तो सिर्फ एक ही बात, यानी जो बात मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून में बयान हुई है एक ही आयत में, उसकी मैंने तौज़ीह मज़ीद कर दी। यानी ये बता दिया है कि जो कुरान मजीद ने यहाँ इस उसलूब में बात बयान की है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तो ऐसा नहीं है कि एक आयत में इस उसलूब में बयान हुई है तो अपनी हकीकत के लिहाज से कहीं और बयान नहीं हुई, बल्कि तमाम पैगम्बरों की दावत जब बयान की गई है तो असल इसी उसलूब में बयान की गई। यानी उसमें ये तरीका तो नहीं इख्तियार किया गया कि हमने जिनों और इंसानों को इस मकसद के लिए पैदा किया है, लेकिन पैगम्बर को उठाया जा रहा है और उसकी सरगर्श बयान हो रही है। और कुरान मजीद ये कहता है कि हमने लूत को उठाया और कहा कि अपनी कौम से ये कहो, हमने नूह को उठाया और उनसे कहा कि अपनी कौम से ये कहो की बंदगी करो, यानी अल्लाह की इबादत करो, आप उसी इस्तलाह को ले लीजिए। तो इस इस्तलाह के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत दी है, इसको कुरान मजीद ने अंबिया की दावत को जब बयान करता है ऐसे बयान, जहां जहां भी आप देखें कुरान मजीद में तो बिलअमूम वो इसी तरीके से उसको इस जामे ताबीर में बयान करते हैं। तो ये मैंने उसकी ताकीद मजीद के लिए ये बात बयान की है। और फिर उसके बाद उस आयत को ले लिया है जिसमें गोया कुरान ने इसको बतौर उसूल के बयान कर दिया कि हमने हर उम्मत में एक उसूल उठाया। यहाँ उम्मत से मुराद यानी इस दुनिया को जब अल्लाह ताला ने बखेरा है, आपको सबाक से ये बात वाजे हो जाती है, तो हर उम्मत के सिरे पर अल्लाह ताला ने एक पैगंबर की बेइज्जत की है ताकि उस पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाए और उसको जो दावत पेश करने के लिए भेजा वो इस जुमले में बयान हुई अनेबुदुल्ला वस्तनेबुद्दा। अरबी जुबान के तालिबिल्म जानते हैं कि यहाँ अन जो है ये गोया तफसीर का अन है, यानी एक बात कही गई और फिर ये कहा गया कि जो दावत उनके हाथ में दी गई, जो पैगाम उनके हाथ में दिया गया वो ये अनेबुदुल्ला वस्तनेबुद्दा। इस इबादत के मानी क्या है, यानी ये सवाल पैदा होता है। अब उसके बाद दूसरा सवाल यही होना चाहिए कि अगर ये बात मालूम हो गई कि दीन की हकीकत अल्लाह की इबादत है या अल्लाह ताला का बंदों से जो असल मुतालबा है या बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि वो उसकी इबादत करे। मैं फिर अर्ज कर दिया कि उर्दू के लफ्ज़ इबादत को दिन से निकाल देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में लफ्ज़ इबादत बिल्कुल और मफहूम में बोला जाता है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मुतालबा नहीं बोला। अब ये सवाल ज़ाहिर अहम तीन सवाल बन गया कि फिर इस इबादत इस लफ्ज़ इबादत के मानी क्या क्या मतलब है इसका, यानी अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मेरी इबादत करो तो असल में क्या कहते हैं, हम अपनी जुबान में उसको कैसे अदा करें। तो यहाँ रुक कर मुझे चंद चीज़ें आपको बतानी है। इसी से असल में जो दूसरा नुक्ता नज़र है यानी मौलाना सैयद अकबरुल्लाह साहिब मौदूदी का नुक्ता नज़र है उसमें और मेरे नुक्ता नज़र में, या जैसे कि मैंने इशारा किया था कि जो हमारे उलमा का एक सिलसिला चला आया है उसके नुक्ता नज़र में जो फ़र्क बाकी होता है वो अगर जी यहाँ नुमाया नहीं होता लेकिन उसकी बुनियाद यहाँ से पड़ती है। तो एक लतीफ़ फ़र्क है मानी की तयन में जिसको मुझे ज़रा कुछ मिसालों के साथ वाजे करना होगा समझाना होगा। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वही लतीफ़ फ़र्क असल में बुनियाद बन गया है दो ताबीरों की। अगरचे वो यहाँ तो महसूस होगा कि नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यानी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन वो बन गया और वो चीज़ खुद नुमाया हो जाएगी आगे के बाद। जब हम किसी लफ्ज़ के मानी तय करते हैं तो एक तो बड़ा सादा तरीका है ना जो एक आम आदमी इख्तियार करता है, वो तरीका ये है कि वो किसी जुबान का लुगत उठाएगा और वहां से उसको मानी देगा अगर उसको मालूम नहीं। अच्छा, अगर उसको मालूम है तो मालूम होने का क्या मतलब होता है, यानी असल में वो उन मानी में अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है रोजमर्रा जिंदगी, यानी दो ही शख्स सूरतें होती, मालूम नहीं है तो लुगत उठाएगा देख ले, और अगर मालूम है तो वो उसका मालूम होना कोई शूरी अमल नहीं होता, यानी ऐसे नहीं होता कि उसने उन मानी को तय किया होता है, वो असल में बेतकल्लुफ उन मानी में इस्तेमाल कर रहा होता है। और सादगी से अगर कोई पूछे इस लफ्ज का क्या मतलब है तो बता भी देगा, कोई बड़ा मसला अगर ना पैदा हो तो बता देगा। लेकिन लफ्ज के मानी जब इल्मी सतह पर समझने की कोशिश की जाती है तो बहुत मामूली सी गलती बहुत बन जाती है, यानी अगर जो वो होती बहुत मामूली सी गलती लेकिन बन बहुत बड़ी गलती जाती है। उसकी वजह, उसकी वजह ये है कि जब लफ्ज के मानी आप किसी दूसरी जुबान से तय कर रहे होते हैं तो आखिर कैसे तय करें, इस्तेमाल से तय करें, यानी ऐसा तो नहीं होता कि अंग्रेजी जुबान में किसी लफ्ज के आप मानी तय करना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी अंग्रेजी कौम आके बताएगी किसके मानी, ऐसा तो नहीं होता। यानी जो अंग्रेजी जुबान के अंग्रेज माहिरीन भी होंगे वो भी असल में क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी कौम के अंदर उस लफ्ज के इस्तेमाल का जायजा ले रहे होते हैं, यानी जुबान के बनने के अमल में तो कोई बनते कारफरमा नहीं होता। लोगों ने लफ्ज को बोलना शुरू कर दिया, वो मुख्तलिफ पहलुओं से उसको इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ये इस्तेमाल एक खास सतह पर जब पहुंच जाता है तो बेशुमार लफ्ज के पहलू वजूद में आ जाते हैं। अब एक आदमी लुगत मुरत्तब कर रहा है या किसी तहरीर में मानी समझ रहा है तो वो क्या करेगा, वो ये करता है कि वो उस जुबान के इस्तेमाल को देखता है, कैसे कैसे अहले जुबान इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखने का अमल जिस तरह के मैंने अर्ज किया, अगर बहुत गहरी नजर से ना हो तो इसमें सूरत हाल वो होती है जो उस फारसी के शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया ना उसको, कि मैं महमल के पीछे, महमल जानते हैं ऊंट पर जो कजावा होता है, तो पुराने जमाने में डाला उसी में समझ लेती है, यानी उसमें रेलवे सैलून और जहाज अभी वजूद में नहीं आए थे तो उसने बयान किया है कि रस्तों के खारस बाग महमल ने आंसू दर नजर मैं जा रहा था महमल के पीछे पीछे और ख्याल था कि कहीं ना कहीं नाका रुकेगी तो मुलाकात हो ही जाएगी, नजर नहीं हटाई मैंने लम्बे भर के लिए, चलते चलते पांव में कांटा झुक गया, मैंने कहा कि कांटा निकाल लो, झुका कांटा निकाला उठा तो एक लम्हे की गफलत हुई और 100 साल गिरा दिया। रफ्तम के खारज पाकशम, चलते चलते चाल हुआ कि कांटा निकाल लो पाँव से, महमल ने आशुदा नजर महमल आंखों से या लहजा गाफल गश्तमो 7 साल गफलत तो एक ही लहजे की हुई, एक लम्हे की हुई, लेकिन रास्ता 100 साल का दूर जाता है। तो जुबान के मामले में भी गलती बिल्कुल ऐसी ही होती है कि या लहजा गाफल गश्तमो 7 साल। जिन माहरीन ने इस पर काम किया है उनकी आप पहले पढ़े तो मामूली गलती हुई किसी जगह, तो मामले के अंदर ऐसी ऐसी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं कि अंदाजा नहीं कर सकता। मैंने कई मरतबा तालिबों से कहा है कि बड़ी ही नाजुक, बड़ी ही नफीस, बड़ी गैर मामूली बहस, क्योंकि ये ज्यादातर अरबी जुबान में है इस तरह की बहसें कुरान मजीद की जुबान के बारे में। वो मौलाना हमीदुद्दीन फ्राई ने सूरह तहरीम की जो आयत है फकत सदर कुलूब होगा उस पर की है, क्योंकि उस हिस्से का सूरह तहरीम की तफसीर का मौलाना अमीन अहसन ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया है। तो जो लोग इस नज़ाकत को समझना चाहें क्या चीज़ होती है जुबान में, यानी उसमें उनको एतराज है उन मानी पर जो लोगों ने उस लफ्ज़ समझे और सभी ने समझे, फकत सदर कुलूब होगा में एक लफ्ज़ है सदर, उसके मानी पर उनको एतराज है। उन्होंने ये बयान किया है कि इस लफ्ज के मानी को समझने में लोगों को गलती क्यों लगी, और फिर ये बताया है कि इसके मानी को मुतय्यन करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो उस बहस को अगर आप देखें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जुबान का एक हकीम कहना चाहिए, जुबान का एक फलसफी, जुबान का एक अदाशनास वो कैसे उतरता है उसके अंदर और किन किन पहलुओं से उसकी नदाकतों को जाएगा। तो एक बड़ा सादा तरीका बेलहूम लोग इख्तियार करते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने ये इख्तियार किया, मिसाल के तौर पर गुलाम अहमद साहब परवेज ने बहुत इस पर काम किया और एक लुगत लुगातुल कुरान के नाम से लिखी है। इसी तरह इमाम राहिब इस कहानी का लुगत मौजूद है मुफरदातुल कुरान के नाम से, तो खास मौजूद है उसका यही। ऐसे ही सालबी की फिक्र लुगत है जिसमें अल्फाज इसी तरह की नदाकतों को बयान करते हैं। ये तो खैर खास किताबें हैं जो इसी पहलू से लिखी गई हैं, लेकिन अदबी नजाकतों को और अल्फाज के मानी की तयन में जाहिज की बहसें अलबयान व तबीन में, मुबर्रद की बहसें काबिल में बड़ी गैर मामूली। इसमें भी जो उसूल की चीज़ें हैं वो मौलाना यद्दीन फ्राई की जो छोटी सी किताब है मुफरदातुल कुरान मुकम्मल नहीं हो सकी, 70 लफ्ज़ों पर उसमें उन्होंने कुरान के 70 लफ्ज़ों पर बहस की, उसमें छोटे छोटे मुकदमे हैं बस 4-5 उन्होंने शुरू में लिखे हैं, बेनज़ीर चीज़ है। यानी वो ये बताती है कि एक लफ्ज़ के को देखने के लिए उसमें खास तौर पर वो बहस देखने की है जिसमें उन्होंने मुबर्रद की है गलती पर, जो खुद एक बड़ा गैर मामूली आदमी है इस फन में तनकीद की, और ये बताया कि देखिए कैसे एक शेर के अंदर से मानी को मुतय्यन करने में गलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिन लोगों को शौक है, मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी बहस करनी है इस पहलू से यहाँ, तो वो ज़रूर देखें। यानी जिन भी लोग जिन लोगों को भी इससे दिलचस्पी है और वो कुछ तालिबाना शौक रखते हैं या ज़ुबान को अंदर उतर के देखना चाहते हैं कि उसमें गलती कैसे लगती है, मानी कैसे मुतय्यन किए जाते हैं, और लग जाए तो क्या होता है, यानी भाई सात साल राहम दूर शुद्ध ये कैसे होता है, तो इसको जरूर उनको देखना चाहिए। यानी सूरह तहरीम में फकत सगत रूबो कुमार की बहस इसी तरीके से ये जो मबारस है मुफरदात के शुरू में ज़्यादा अगर लोग अरबी जुबान से बातों को मुबर्रद वगैरह की बहसें देख सकते हैं उससे उनको बड़ी रोशनी मिलेगी, मालूम होगा कि जुबान के क्या क्या आदाब होते हैं, अदाएँ क्या होती हैं। इस तो हमारे यहाँ मौजूदा ज़माने में भी बाद लोगों ने ये ख्याल करके कि अगर मुबर्रद मुख्तलिफ नज़ायर और शवाहद पेश करके एक लफ्ज़ पर बहस कर लेता है, इसी तरह से इमाम फ्राई बहस कर डालते हैं, ज़मख़्शी बहस कर डालता है, हकीकत डालते हैं, तो अगरचे वो बराहत ही लग रहा होता है तो भाई उन्होंने कुछ अशार नकल किए हैं, कुछ ज़र्ब अमसाल नकल कर दिए हैं, कुछ अरबों के जुमले नकल कर दिए हैं, और कोई कुरान की आयत नकल कर दी, इन बाहर नहीं लग रहा होता है, तो आदमी ख्याल करता है मैं भी कर डालता हूँ ये काम, लेकिन जब इसको आप अंदर उतर के देखते हैं तो मालूम होता है कि शायद इल्म में इससे मुश्किल हो जाता, यानी बाकी सारे काम आसान निस्बतन, लेकिन ये मुश्किल चीज है। अगर इन चीज़ों को अरबी जुबान में देखने का ज़्यादा शौक ना हो तो इस नौयत की बड़ी खूबसूरत पैसे गालिब ने, आपको याद होगा कि कलकत्ते का जिसको वो कलकत्ते का खत्री कहता है, जब गुस्से में आ गया था तो फिर वो कतील कतील ने फारसी जुबान का लोग लिखा बुरहाने काते बहुत मशहूर हुआ, 4-3 दिनों में अभियान से भी छप गया और उसका बहुत शोरा था, तो गालिब ने उसके ऊपर तनकीद लिखी और ये बताया कि देखिए इसमें फना फना जगह के ऊपर मानी की ताइन में ये गलती हुई, खैर ये है इसको समझने में ये गलती हो गई, लफ्ज़ ये था इसको समझने, बड़ी नफीस पैस बड़ी खूबसूरत पैसे। यानी मालूम होता है कि एक आदमी किस जगह तक जुबान के अंदर उतर सकता है, वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है और आपको बहुत कुछ मिल जाएगी। और वो अब तो जो छुआछपा है तो ईरानियों ने भी गालिब की वो बहसें उसके हाशिए में सब दे दी, और कमो बेशहले जुबान ने भी एतराफ़ किया है कि शक नहीं है इसमें, कोई इख्तलाफ तो हो ही सकता है बाज़ जगहों के ऊपर, लेकिन वो शुबा नहीं जानता है कि ज़ुबान क्या चीज़ होती है और ज़ुबान में मानी की तयन कैसे होती है और ज़ुबान में मुख्तलिफ शेयर्स कैसे पैदा होते हैं। तो ये नाजुक बहस जो है मैं इसको चंद आपकी ज़ुबान की मिसालों से समझाऊंगा कि इसमें क्या हो जाता है। बाद अरबी और फारसी के इन मबायस के बारे में मैंने इशारा कर दिया कि लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ें, और अगर पढ़ेंगे तो उम्मीद ये है कि उसमें बड़ी बसीरत और बड़ी रोशनी को मिलेगी। आपने देखा इबादत से मिलता जुलता एक लफ्ज उर्दू जुबान में पूजा बोलते हैं ना, पूजा। ये देखिए मैं एक जुमला बोलता हूं, फलां साहब आज मंदिर में पूजा करने के लिए गए, जब आप पहले जुबान के इस्तेमाल से लफ्ज के मानी मुतय्यन करेंगे तो जुमले ही होंगे ना, मतलब मैंने एक जुमला बोलता कि फलां साहब आज मंदिर में पूजा करने के लिए गए, ये एक जुमला, इसी इस्तेमाल का एक दूसरा जुमला सुनो, ये साहब वो आजकल सेक्रेटरी है दिफा के और परवेज मुशर्रफ साहब भी पूजा करते हैं, बोलते हैं ना, यानी आप छोड़िए वो सिर्फ आकाम नहीं मानते पूजा करते हैं। ये पूजा का लफ्ज है वहां भी इस्तेमाल हुआ यहाँ भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है, یعنی یہاں ہوا یہ ہے کہ اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر اس کی جو حقیقت ہے اس سے ایک بڑی خوبصورت سی تشبیہ دے دی ہے, یعنی ایک مجاز ہے جس کو پیدا کر دیا گیا ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اس کا نتیجہ نکال لیں کہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی باقاعدہ پرستش کرتے ہیں, تو یہ غلط مانی. یعنی یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہو, جبکہ پہلے جملے میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہو. مجاز کی جیسے سادہ مثالیں, میں نے ایک مرتبہ زبانی پر بحث کرتے ہوئے پیچھے یہ مثال دی تھی کہ بھائی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چڑیا گھر میں گیا, میں نے بچوں کو شیر دکھایا, تو ظاہر ہے کہ یہ بحث نہیں ہے وہاں, وہاں یہ اپنے اس حقیقی مفہوم میں استعمال ہو گیا. لیکن جب میر انیس کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, اب یہاں پر یہ اس مفہوم سے ہٹ کر ایک مجاز کے اسلوب میں استعمال ہو گیا. لفظ کو آپ اگر مثال کے طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی حقیقت میں کیا ہے, تو آپ کو اس کے استعمالات کی مثالوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. یعنی کہیں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہوگا, کہیں وہ کسی مجاز میں استعمال ہو گیا ہوگا, کہیں وہ کسی تشبیہ کے لیے استعمال ہو گیا ہوگا, اور کسی جگہ کے اوپر وہ اپنے مظاہر پر استعمال ہو گیا ہوگا. یعنی لفظ کے پھر مظاہر بھی ہوتے ہیں, ان میں استعمال ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اگر آدمی اس فرق سے واقف نہ ہو تو وہ اس نے ایک استعمال لیا, دوسرا لیا, تیسرا لیا, چوتھا لیا. ان استعمالات کو اس نے لینے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے اس لفظ کی یہ چار معنی, حالانکہ وہ چار معنی نہیں ہوتے. یعنی اس میں معنی, حقیقت, استعمال, اس کا فرق واقع ہو جاتا ہے, ایک ہی چیز ہوگی. لفظ تو ایک ہی ہوگا نا, پوجا کا لفظ جیسے میں نے مثال. اسی طرح آپ اپنی زبان میں غلامی کے لفظ کو آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں, یعنی غلامی کا لفظ آپ کس کس پہلو سے استعمال کریں گے. جی ان کی کیا بات ہو, جوروں کے غلام, یہ بھی تو استعمال ہے. غلامی دنیا سے ختم ہو چکی, یہ بھی اس کا استعمال. ہم نے تو خدا کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا, یہ بھی اس کا استعمال. یعنی پھر آپ نے بھی دیکھا نا, وہ تو جوروں کا غلام ہے. تو بعض اوقات لفظ تو استعمال ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں, لیکن اصل میں جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ سیدھا نہیں ہوتا, اس میں تعریض ہوتی ہے, اس میں طنز ہوتی ہے. اچھا یہ جملے کا سیدھا نہ ہونا, اس کے اندر کوئی تعریض کا پہلو ہونا, طنز کا پہلو ہونا, یہ بھی لفظ کے مفہوم کو تھوڑا سا اٹھا کے کسی اور جگہ لے جاتا ہے بعض مقامات کے اوپر. تو لفظ عبادت کو بھی جب متعین کرنا شروع کیا جائے گا تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ وہ لفظ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے, اپنے مظاہر کے لحاظ سے کیا معنی رکھتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا نا اس کے لحاظ سے. جیسے میں نے لفظ پوجا کی مثال دی کہ آپ اگر اس کے معنی مندر کی جگہ سے اخذ کریں گے تو اور صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور اگر آپ اس کے معنی فلاں صاحب کی ہو تو پوجا کرتا ہے, وہ صرف ان کی بات ہی نہیں مانتے, وہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں. یعنی یہ وہ پوجا نہیں کر رہا ہوتا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈوت بجا لانا, یا آپ کہتے ہیں کرمش بجا لانا, یا آپ کہتے ہیں کہ سرے نیاز جھکا دینا, یعنی وہ پہلو نہیں ہوتے وہاں پہ. وہاں تو اصل میں یہ مقصود ہوتا ہے بیان کرنا کہ وہ تو ان کی بات کے گویا یوں سمجھ لیجیے اس نام میں پیچھے ہوئے, یہ مراد ہوتی ہے اس کی بیان کرتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہیں مختلف لفظ کے, ان کو نہ ایک سطح پر رکھا جا سکتا ہے, نہ ان کو بیک وقت معنی قرار دیا جا سکتا ہے, نہ ان سب کو جمع کر کے لفظ کے کوئی معنی بیان کیا. یعنی آپ دیکھیے قرآن مجید میں لفظ تقوی استعمال ہوا ہے, بہت عام استعمال ہوتا ہے. یہ بطور اصطلاح اردو میں جب پہنچتا ہے تو پھر تو ہم اس کا ایک مفہوم اخذ کر لیتے ہیں, لیکن اب اس لفظ کو آپ دیکھو یہ کیا کرتا ہے. ظاہر ہے قرآن مجید میں تو عربی کا ایک لفظ ہے, یہ لفظ بطور فعل استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو یہاں بھی استعمال ہو جائے گا کہ بھائی یہ رستے میں چل رہے ہو, کہیں ٹھوکر نہ کھا کے پڑھنا, بچو بچو. اب یہ دیکھیے یہ بالکل سادہ مفہوم, بچو. تو یہی لفظ تقویٰ, اتقو استعمال ہو رہا ہے اس میں, آگ سے بچو قرآن مجید استعمال کرتا ہے نا, تو اسی لفظ کو بکنا عذاب النار, یہی تقویٰ ہے. کینا اسی سے بنا ہوا ہے, تقویٰ ہی سے بنا ہوا ہے. کینا بکنا میں واو ہے, اصل میں تو کینا ہے نا, کہ بلکہ کے فتق النار اللتی وقودہ الناس والحجارہ, محض بچو معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، کھڑو، لیکن تھوڑا سا فرق پڑ گیا اس مفہوم میں استعمال ہو جاتا ہے. ڈرو یعنی بچو ہی کی ایک شیڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے بچو گناہ سے بھی ہے، یہاں خوف کا عنصر نہیں ہوتا، بچو آگ سے بھی ہے. تو یہ بچو آگ سے بھی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈرو کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اچھا اور یہی چیز جو ہے یہ اوپر اٹھتی ہے، بچنا، ڈرنا، تو متنبع رہنا، ہوشیار رہنا اس میں ہو جاتا ہے. اور متنبع رہنا اور ہوشیار رہنا جب خدا کے حوالے سے استعمال ہو جاتا ہے تو ایک بڑی جامع سی تعبیر بن جاتی ہے، یعنی اتقوا اللہ، میں خدا کے معاملے میں اندیشہ نہ رہا ہوں، خدا کے معاملے میں بے پرواہ نہ ہوں. تو اب ہم اس کو مختلف شیڈز میں سمجھتے چلے جاتے ہیں. لفظ وہی تقویٰ ہوتا ہے، اچھا وہی لفظ ٹریول کرتا ہے، یعنی ہماری زبان میں آ گیا، اور ہماری زبان میں آ گیا تو اب صورتحال کیا ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ بڑا متقی آدمی ہے. آپ نے کبھی اب متقی آدمی کی یہ جو تعبیر ہے یہ کبھی مظاہر پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کبھی حقیقت پر استعمال ہو رہی ہے، کبھی ہم چند ظاہر کی چیزوں کو متقی آدمی ہے. کبھی دیکھا آپ نے ڈھنگنے سے نیچے شلوار نہیں ہوگی، داڑھی بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں، اونٹے مڑوا کے رکھتے ہیں، متقی ہوگی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیے بات یہ کوئی رشوت وغیرہ نہیں لیتے متقی آدمی. یعنی اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ لفظ اصل میں ایک اصطلاح بن گیا، اور اصطلاح بن جانے کے بعد وہ اب کبھی اپنے مظاہر کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہو جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ متقی آدمی ہے تو ہم مظاہر کے لحاظ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یعنی اب ڈر، بچو، خوف، یہ معنی ختم ہو گئے اس کے اندر سے. ڈر، بچو، خوف اس کی حقیقت میں موجود ہے، یعنی وہ اصل میں ڈرتا ہے، بچتا ہے، اللہ سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے. سبب وہی ہے، یعنی وہ لفظ اپنی حقیقت میں چلا آ رہا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو چند مظاہر ہوتے ہیں جن کو ہم اس سے تعبیر کر دیتے ہیں. ان تمام مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ہی ان کے اندر سے لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے کوئی آدمی دلائل اخذ کرنا شروع کرے گا تو اب وہ چوک سکتا ہے. مثلاً اگر وہ اس جملے کو لے لے، یہ جو میں نے ابھی ٹکنے سے اونچی شلوار اور داڑھی کے بارے میں عرض کیا، اور پھر یہ کہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اونچی ٹکنے سے شلوار رکھتا ہو اور دیکھیے الٹ گئی، یعنی صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ان مظاہر پر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مظاہر اس کے معنی نہیں، سمجھ رہے نا؟ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں لفظ متشرع، جانتے ہیں لفظ کیا ہے؟ شرع ہے، شریعت، شرع. اس سے تفاعل کا باب ہے تشرع، اس سے اس میں فائل لوگوں نے بنا لیا متشرع، یعنی شریعت کی پابندی کرنے والا اصل میں تو یہ ہونا چاہیے. اب لفظ اپنے اصل لغت کے لحاظ سے اپنے اندر ایک منفی مفہوم رکھتا ہے. تشرع یعنی شریعت کی پابندی کا اظہار کرنے والا، لفظ کا اصل مفہوم نہیں ہے. آپ جانے تفاعل جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہی لفظ ہماری اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے کہ وہ بڑا متشرع آدمی ہے تو ایک تو منفی پہلو لینے لگ جاتا ہے اس کے اندر، یعنی وہ شریعت کی پابندی کرنے والے کے معنی میں ہوتا ہے. اور متشرع آدمی میں پھر مظاہر پر استعمال ہوتا ہے، یعنی مجرد شریعت کی پابندی نہیں بلکہ پھر کچھ مظاہر، اور وہ مظاہر وہی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان کی بنیاد پر بول رہی ہے. مطلب ایک بار بھی بہت نیک، بہت زیادہ وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرنے والا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ دین کے احکام کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ متشرع استعمال نہیں ہوگا، متشرع اسی وقت استعمال ہوگا جب اس کی داڑھی، مونچھ، ظاہر جو ہے وہ بالکل قائد ضابطے کا. تقویٰ تو پھر دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے متقی، متشرع بالکل ہی استعمال نہیں ہوگا. متشرع آدمی کا مطلب یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ظاہر کو بالکل شریعت کے مطابق بنا رکھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لفظ کے اندر اسی طریقے سے سفر کرتی ہیں، یعنی اپنی حقیقت پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا ہوگا، یعنی جو جملے ہوں گے یا اشعار ہوں گے یا قرآن کی آیت ہوگی جہاں لفظ استعمال ہوا ہوگا، تو اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا کہ یہاں یہ اس پہلو سے استعمال ہوا. اگر آپ چوک گئے اور آپ نے مظاہر والے حصے کو لیا اور لے کر اس سے معنی بیان کر دی، تو बात कहीं से कहीं चली, अपनी जबान में हम पहचान लेते हैं गलती हो गई, इसलिए कि वो एक बिजदान होता है, सौफ होता है, मैं इस्तेमाल कर दूँ ना गलत, तो एक आम आदमी भी उस पर टोक देगा मुझे। लेकिन किसी दूसरी जुबान पर आप जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, चूंकि उसके साथ वो आपका बिजदान ही इन्होंने वाबस्ता होता, तो वहाँ गलती होने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो लफ्ज इबादत पर अब इस थोड़ी सी मुख्तसर सी तमहीद के बाद आइए, इसमें क्या मसला पैदा हुआ है। अभी वक्त है
जी, 5 मिनट।
इस इबादत के मानी क्या है? इस इबादत के मानी क्या है, ये अगर गौर कीजिए तो सूरह नहल की इसी आयत से वाज़ह है, अल्लाह की इबादत के बिलमुकाबिल यहां तागूत से बचने की हिदायत की गई है। ये तकाबुल से लफ्ज के मानी को पहचानना, ये खुद एक मानी की ताइम का उसूल है। लेकिन ये भी अंधाधुंध नहीं इस्तेमाल किया, यानी ऐसा नहीं है, ये वाहिद फन है कि जिसको आप कायदे में नहीं ला सकते, जिससे मुश्किल जो पैदा होती है ना, मतलब आप कवायद है ग्रामर के, उनको कायदे में ला सकते, आप बता सकते हैं कि हाल ये होता है, मफूल ये होता है, फायद ये होता है, लेकिन इसको आप कायदे में नहीं ला सकते। इसमें इतने शेड्स होते हैं कि वही जरा सी गलती लगी और बात कहीं से कहीं पहुंच गई। यानी आप तकाबुल से लफ्ज के मानी बाज जगहों पर बिल्कुल नुमाया होंगे, बाज जगहों पर नहीं होंगे। आप अगर इसमें देखना चाहें तो जिस जमाने में मैंने बहस की थी रजम के मौजू पर, बड़ी तफसीली बहस है, मेरी किताब बुरहान में छपी हुई है मुख्तबर इलम के साथ, उसमें कुरान मजीद की एक आयत ज़ेर बहस आ गई थी, मुसलातन गैर मुसाफिहातन वला मुत्तफिजात अहकाम। यानी बाज लोगों ने, बाज अहले इल्म ने इस आयत से इस्तलाल किया था हमारे नुक्ते नजर के खिलाफ, और इसमें लफ्ज मुसलात के क्या मानी है ये मौजू बन गए थे। क्योंकि मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी ने दर हकीकत यहां से जवाब दिया है इस बहस का, तफहीम कुरान में अगर आप देखें तो उसमें खवारिज पर तनकीद करते हुए उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि वहां एक बड़ी पेचीदगी पैदा कर दी कुरान मजीद ने, वो पेचीदगी ये पैदा कर दी है कि उसने ये कहा है कि जो लौंडियां गुलाम जो हैं इनसे अगर किसी मौके के ऊपर बदकारी का इंतकाब हो जाए तो उनको आधी सजा दी जाएगी, उस सजा के मुकाबले में आधी सजा दी जाएगी जो आजाद औरतों के लिए मुकर्रर है। तो ये उसलूब जो है ये बता रहा है ना कि भाई कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे अदा किया जा सके, तो रजम को कैसे अदा किया जाए, ये एक मुश्किल पैदा हो जाती है ना, अदा कैसे किया जाए। तो इस सूरत हाल में है कि आदमी है तो भाई इसका मतलब ये सजा तो भी 100 कोड़े वही आधी हो सकती है, यानी ये तो रजम तो हो नहीं सकता ना अदा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया है और वो जवाब देने के नतीजे में लफ्ज मोहसनात बहस पैदा हो गई। मैंने उस पर कुछ बहस की तो मेरी उस किताब में है, उसमें मैंने बताया कि लफ्ज के मानी कैसे मुतय्यन किए जाते हैं। एक साहिब इल्म ने मेरे ही उस तरीके को लेकर उसका इतलाक कर डाला है उस मानी के ऊपर, फिर मैंने उस पर तनकीद की और ये बताया कि देखिए आपको गलती कैसे देखिए, यानी वो बहस जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लफ्ज अपने मकूम को, तो अभी हम आगे करेंगे, लफ्ज और आ रहा है बड़ा अहम, इकामत दीन, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से मसला दर मसला पैदा होता चला गया और वो लफ्ज का मफहूम है जिससे जिसको जिस जगह से समझना चाहिए वहीं गलती। इस इबादत के मानी क्या है, अगर गौर कीजिए तो सूरह नहल की इसी आयत से वाजे है, अल्लाह की इबादत के बिलमुकाबल यहाँ तागूत से बचने की हिदायत की गई है। अब तागूत और शैतान कुरान में बिल्कुल हम माना इस्तेमाल हुए, खुद ये लफ्ज तागूत जो है इससे बड़े मसले पैदा हो गए। आपको याद होगा कि एक जमाना ऐसा रहा है कि हम तागूत की हुकूमत में नहीं रहना चाहते, तागूत के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, ये हुआ। हालांकि कुरान मजीद में यानी कोई फर्क ही नहीं है दोनों, आप ये समझें कि इबलीस के लिए या इबलीस की जरूरियत के लिए कुरान दोनों लफ्ज इस्तेमाल करता है, एक शैतान एक तागूत, एक ही मानी लफ्जों में कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब खुद लफ्ज शैतान भाई इबलीस के लिए तो इसमें अलम बन गया हुआ है, इबलीस का तो एक नाम शैतान हो गया, यानी जिस तरह उसका नाम इबलीस है ऐसे ही उसका नाम शैतान भी हो गया, शैतान आया था मेरे पास, शैतान ने इल्हाम कर दिया तो बोलते हैं। लेकिन ये लड़का बड़ा शैतान है, ये भी तो उसका इस्तेमाल है, अब यहां तो वो इबलीस नहीं होता, तो नहीं होता, इस पर शैतनत सवार है। ये जुमला जो है ये लड़के की शरारत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एक इंतहाई गैर मामूली तौर पर सरकश इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर चाको सबाक किसी मौके के ऊपर तकादा करें तो जिनसी बेरारमी में इंतहा पर पहुंचे हुए इंसान के लिए इस्तेमाल। अब ये जाहिर है कि उसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो उसकी हकीकत तो ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन ये कि वो अपने मुख्तलिफ पहलुओं को तब्दील करता चला जाता है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये तागूत और शैतान के मामले में भी है, हालांकि बिल्कुल हमारा इस्तेमाल होते हैं ऐसे ही है कि जैसे इब्लीस नाम आपने इस्तेमाल कर लिया, कहीं शैतान इस्तेमाल कर लिया, कहीं आप तागूत इस्तेमाल कर लिया। और मजाजी मानी तो बहर होते ही मुख्तलिफों पर, अगर सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ताला ने यहूद के लीडरों के बारे में ये कह दिया कि जब ये अपने शैतानों के पास जाते हैं तो जाकर ये कहते हैं, अब यहाँ वहां जाहिर है कि जो अपने उनके शैतान है वो इब्लीस नहीं, वहां उनकी शैतनत या उनकी जो साजिशें और ये चीजें हैं वो क्वेश्चन है। कुछ तो तमीज बन गई, वो कहते हैं कि वक्त हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
अदर दैन उस चीज़ के जो कुरान का बयान हो रही है वो जन्य सबूत है, अगर हुजूर का माखज़ है तो इस पर गौर होना चाहिए कि खुद कुरान उनकी महाफत कर रहा, कुरान बयान कर रहा है कि वो क्या है, कतई ही सबूत है।
ये पहलू वाज हो गया था, कहे बगैर भी वाज था कि इस पहलू को आप नुमाया करना चाहिए।
7:45 मगरिब और 8:05 पर वापसी।